शांति। राजयोग में कर्म और धर्म दोनों को समान स्थान दिया गया है। वास्तव में कर्म और धर्म दोनों को साथ साथ होना चाहिए। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म को महत्व तो देते हैं, उनके अनुसार वर्क इज वर्शिप, अर्थात वे ये मानते हैं कि कर्म ही धर्म है। कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म सफलता दिलाना चाहिए, तो कर्म में इतने अग्रसर हो जाते हैं जो परमात्मा को भूल जाते हैं। दिन रात मेहनत ही करते रहते हैं कुछ धन की कमाई के लिए, मान इज्जत यश अर्थात इस संसार की भौतिक उपलब्धि के लिए मेहनत करते हैं, अर्थात कर्म को महत्व देते हैं, लेकिन धर्म को महत्व नहीं देते। धर्म का वास्तविक अर्थ है धारणा। जो हम अंदर में धारण करते हैं वास्तव में वही हमारा धर्म है। और धर्म के लिए यह एक व्याख्या है कि स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। वास्तव में स्वधर्म ही सच्चा धर्म है। स्वधर्म अर्थात आत्मा का धर्म। जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप में टिक करके कर्म करता है वही धर्म और कर्म को मिलाकर उनका संतुलन कर आगे बढ़ता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म को महत्व देते हैं और धर्म की परिभाषा वे पूजा पाठ जप तप प्रार्थना तीर्थ आदि नामों से देते हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। अपनी जिम्मेदारियों से वे दूर भागते हैं और दिन रात एक ही स्थान पर बैठ करके ही भगवान का नाम लेते हैं। वास्तव में कर्म करते समय धर्म को बुद्धि में रख करके कर्म करना, यही राजयोग हमें सिखाता है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कर्म योग भी कहते हैं। अर्थात हर कर्म परमात्मा की याद में किया जाए। कर्म मोटा स्वरूप है, ये बाहर का स्वरूप है और धर्म भीतर का स्वरूप है। तो जब तक हमने अपने भीतर के विचारों पर ध्यान नहीं दिया तो तब तक हमारे कर्म भी ऊंचे नहीं होंगे। इसीलिए दोनों को मिला करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी चोरी नहीं करते, हम कभी किसी का खून नहीं करते, हम किसी को कभी दुख देने का प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि झूठ बोलना, चोरी करना, खून करना, ये सब पाप के खाते में जाता है। और कई ऐसे हैं जो ये काम नहीं भी करते हैं तो भी वे दुखी होते हैं। तो अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो कर्म को तो वे महत्व देते हैं लेकिन धर्म को महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए ही वे दुखी होते हैं। आप कहेंगे कैसे? भाव है कहने का कि कोई अगर व्यक्ति कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, हो सकता है वह व्यवहार में झूठ न भी बोलता हो, वह सच्चा व्यक्ति हो और कई बार उसके आगे कोई झूठ बोलता भी हो तो भी उसको अच्छा नहीं लगता कि ये व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, क्योंकि वह स्वयं सच्चा होता है। लेकिन धर्म के स्वरूप में अगर हम देखें या अंतर की धारणा की बात को जब हम उठाएं तो झूठ आध्यात्मिक रीति से हर एक बोलता है। सुबह से लेकर के रात्रि तक हम कितना झूठ बोलते हैं। जैसे बताया, व्यवहारिक दृष्टि से शायद झूठ न भी बोलते होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम दिन भर देह को ही मैं समझते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया। तो जहां देह की बात में मैं और मेरा आता है, वास्तव में ये झूठ है, क्योंकि हम अपने असल स्वरूप में तो ये देह है ही नहीं। हम तो एक आत्मा है, एक ज्योति है, एक प्रकाश का पुंज है। ये शरीर तो मेरा केवल एक साधन है, एक आधार है जो मुझ आत्मा ने लिया है इस संसार में अभिनय करने के लिए। तो ये शरीर तो मैं हूं नहीं। और अगर हम शरीर के विषय में मैं और मेरा कहते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से हम बहुत झूठ बोलते हैं। और जब हम देह अभिमान में आकर के मैं और मेरा कहते हैं और फिर उस अभिमान को ठेस पहुंचती है, किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिए, तुरंत उसका असर होता है, हमारे अभिमान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि मैं देह के भान में हूं और उस देह के अभिमान को उसने ठोकर लगाई तो अवश्य उसका दुख होगा। तो अगर हम कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, तो आध्यात्मिक रीति से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्थात कभी भी शरीर के लिए मैं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए मेरा जरूर है, अर्थात ये देह मेरी है, लेकिन मैं इनसे अलग हूं, मैं एक आत्मा हूं। और अगर किसी ने अपशब्द कहे भी, तो भी उसने देह को देख करके कहे, आत्मा को तो वो जानता ही नहीं, और मैं तो एक आत्मा हूं, तो देह को लगा, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। इसीलिए हम उस झूठ से बच जाते हैं, किसी के दुख देने से भी हम बच जाते हैं, और अपशब्द और कई गलत शब्दों के प्रयोग अगर होते भी हैं, तो भी उसका असर मुझ पर नहीं होता। इसी प्रकार कोई कहे कि मैं कभी चोरी नहीं करता, कभी मैंने आज तक किसी की कोई चीज उठाई नहीं, मेरी जो चीज है बस उसी का ही मैं प्रयोग करता हूं, मेरी आंख भी किसी की दूसरे की वस्तु पर नहीं पड़ती है, जिसका होगा वो ही जाने, मैं नहीं हूं, मैं नहीं लेता। अब यहां भी थोड़ा सा अभिमान आता है। देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से हो सकता है आप किसी की वस्तु नहीं उठाते होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आपकी अपनी भी जो वस्तु आप समझते हो, वह भी आपकी वस्तु कहाँ है? क्योंकि जब आप इस संसार में आए तो क्या लेकर के आए? कुछ भी नहीं ले आए इस भौतिक जगत का। और जब आप इस संसार से जाएंगे, अर्थात आत्मा जाएगी, देह तो है ही इस संसार का, वो तो मिल ही जाएगा मिट्टी में, लेकिन आत्मा तो जाएगी, तो आत्मा भी अकेले ही जाएगी, इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु साथ में नहीं ले जाएगी। तो जब हम इस संसार की वस्तुओं को मेरा समझते हैं, वास्तव में यही चोरी करना है, क्योंकि वो मेरी चीज है ही नहीं। अगर ये संसार की भौतिक वस्तुएं मेरी होती तो मेरे साथ जानी चाहिए, अगर ये मेरी होती तो मैं साथ में लाई होती। लेकिन यही कहने में आता है कि इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, न कुछ लाया है, केवल अपना कर्म अपने साथ ले जाता, अपना भाग्य अपने साथ लाया है। तो भाग्य ले आता है और कर्म ले जाता है, और संसार की वस्तुएं वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसीलिए अगर हम भौतिक वस्तुओं को अपना समझकर उसमें मोह रखते हैं तो उसका दुख जरूर होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि वो विनाशी चीजें हैं, आज है कल नहीं रहेंगी। आज कोई भी विनाशी वस्तु मुझे प्राप्त हुई और उसमें मैंने मोह रख लिया, कल वो गुम हो गई या टूट गई या उसकी चोरी हो गई, तो अवश्य मुझे उसका दुख होगा। इसलिए पहले से ही मोह का त्याग होना आवश्यक है, नहीं तो चोरी मानी जाएगी। और हम अपने मुख से कहते भी हैं कि ये सब कुछ भगवान का है। एक तरफ ये सब कुछ इस संसार का है, मेरा नहीं। दूसरी तरफ अब उस दुख से बचने के लिए एक और उपाय है, हम ये सोचते ये सब भगवान का है। जब भगवान का है तो फिर मेरा कहाँ से हुआ। देखिए, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आया और आपसे पूछा उसने कि ये सब किसका है, ये बच्चा किसका है, आप कहेंगे ये सब भगवान का है, उनकी चीज है, अमानत है मेरे पास। तो आप मुख से तो कह देते हो ये भगवान का है, लेकिन सचमुच आप उसको भगवान का मानते भी हो? अगर मानते हो तो वो चीज जाने पर आपको दुख नहीं होगा। जैसे किसी दूसरे की चीज अगर गुम हुई या टूटी तो आपको इतना दुख नहीं होगा जितना दुख आपको अपनी चीज के टूटने और गुम होने पर होगा। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आप रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक आवाज सुनी आपने, किसने कहा हाय मेरी जेब कट गई, तो आपको उतना दुख नहीं होगा, लेकिन आप अपनी जेब टटोलने लग पड़ेंगे कि कहीं मेरी तो नहीं जेब कटी। उसकी जेब कटी तो कोई बात नहीं, पर मेरी जेब नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि वो चीज तो उसकी है ना, मेरी थोड़ी है। तो अगर किसी दूसरे की जेब कटी तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी नहीं है। तो जहां अपनापन आता है और वो चीज हमसे छूटती है तो उसका दुख जरूर होगा। जैसे किसी दूसरे के घर में किसकी मृत्यु हो जाती है तो हम उनको सांत्वना देने जाते हैं, बड़ा ज्ञान देते हैं। कई बार तो इतने ज्ञानी बन जाते हैं जैसे कि हमारे पास सारा ही ज्ञान है। हम उनको यही कहेंगे, आप क्यों रोते हो, आत्मा तो अमर है, वो तो वापस आएगी नहीं, उसकी आत्मा को शांति देना चाहिए, इसलिए शांति में रहना चाहिए। अगर रोएंगे तो क्या वो आत्मा आएगी वापस? तो हम उनको इस प्रकार से सांत्वना देते हैं। ये भी कहेंगे, आखिर तो सबको एक दिन मरना है, सबको जाना है। तो इस प्रकार से सांत्वना दे करके हम उनको शांति का दान देते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, जब हमारे ही घर में किसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें वो ज्ञान उस समय क्यों नहीं याद आता है? क्या ये ज्ञान केवल दूसरों के लिए है या हमारे लिए भी है? इस पर एक चुटकुला याद आता है, एक पंडित जी का चुटकुला, बड़े आते हैं। जो ज्ञान तो औरों को सुनाएंगे लेकिन खुद कहां तक धारण करते हैं। एक दिन एक माता किसी पंडित के पास गई, बहुत दुखी थी, कहा हाय पंडित जी मेरा बेटा मर गया। पंडित जी ने बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन अगले दिन जब वो फिर से गई तो देखा पंडित जी रो रहे हैं। तो माता ने पूछा, पंडित जी आप क्यों रोते हो? तो कहा मेरे गाय का बछड़ा मर गया है। अब सोचिए, उस औरत का बेटा मर गया तो कितना ज्ञान दिया, और गाय के बछड़े मरने पर खुद को ज्ञान नहीं दे सका। तो पंडित ने कहा, माता जी वो बेटा तो तेरा था लेकिन गाय का बछड़ा तो मेरा था। तो देखिए, मेरा कहने से दुख हुआ, तेरा कहने से दुख नहीं होगा। तो अगर हम मन में ये सोचे कि ये तेरा है, भगवान का है, मेरा नहीं, तो अगर वह चीज गई भी तो उसका दुख नहीं होगा। इसी प्रकार कोई कहते हैं कि मैं कभी किसी का खून नहीं करता, कभी किसी का आज तक मैंने गला नहीं दबाया, तो भी मुझे दुख क्यों होता है? तो इसमें भी एक आध्यात्मिक राज है। चाहे हमने किसी का गला न भी दबाया हो, खून न भी किया हो, लेकिन हम अपनी आत्मा का ही खून कई बार कर लेते हैं। मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और विवेक प्रदान करती है, संस्कार के वशीभूत कुछ और कर लेते हैं, और फिर अंदर ही अंदर मन खाता है, क्योंकि करना चाहिए था कुछ और आत्मा के संस्कार के विपरीत हुआ, बुद्धि के विपरीत हुआ, या अपने असली शुद्ध विचारों के विपरीत हो जाता है तो अवश्य मन खाता है, जिसको गिल्टी कॉन्शियस फीलिंग्स कहते हैं। और ये है जैसे आत्मा का घात करना। वास्तव में आत्मा का घात कभी होता नहीं, जीव घात होता है, अर्थात शरीर का घात होता है, जिसको सुसाइड कहते हैं। लेकिन कई उसको आत्मघात भी कहते हैं। और आत्मघात जीव घात में बड़ा अंतर है। जीव घात अर्थात अपने शरीर का घात, जिसको सुसाइड कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है तो उस परमात्मा को ही अधिकार है मेरा जीवन वापस लेने का, मुझे अधिकार नहीं। जब तक मैं इस शरीर में हूं, मुझे उसमें सुख शांति के साथ व्यतीत करना है, रहना है। लेकिन जब समय आएगा, परमात्मा इस आत्मा को बुला लेगा। पर अगर मैं अकाल से अपनी मृत्यु लाऊं, अर्थात समय से पहले ही सुसाइड करके अपने आप को मार डालूं, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। ऐसी आत्मा तो बहुत भटकती है। तो अगर हम सोचते हैं हम दुख से छूटने के लिए अपना जीव घात कर लेंगे तो बच जाएंगे दुखों से, ये भी एक अज्ञान है। क्योंकि आत्मा तो मरेगी नहीं, और वो आत्मा भटकेगी, क्योंकि ये शरीर हमारा घर है। जैसे किसी का घर टूट जाए, और स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति भटकेगा। अगर जानबूझ करके अपने घर को ही तोड़ दे तो दूसरा घर तो है ही नहीं, कहाँ वो रहेगा। पहले दूसरा घर वो तैयार करे, फिर पुराने घर को तोड़े। इसी प्रकार जो सहज बात है, जो स्वाभाविक बात है, वो है कि आत्मा अपने समय पर शरीर छोड़ती है और उनका दूसरा घर तैयार होता है। लेकिन समय से पूर्व अगर इस घर को तोड़ दिया तो जरूर है कि आत्मा भटकेगी। तो हम सुखी नहीं होंगे, लेकिन और ही हमारा दुख 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आत्मघात तो हम कदम कदम पर करते हैं। उस मरने से पहले हम मन से, बुद्धि से कितनी बार मरते होंगे, ये तो और भी अधिक पाप है। इसलिए जो आत्मा के असली संस्कार है, जो शुद्ध संस्कार है, उन्हीं शुद्ध संस्कारों के आधार पर ही हम कर्म करें, तब हम कहेंगे कि कर्म और धर्म दोनों का हमने सच्चा मेल रखा। नहीं तो हम केवल कर्म को महत्व देते और धर्म को अथवा अपने आंतरिक विचारों को महत्व नहीं देते तो हमारा कर्म भी कभी सफल नहीं होगा। अगर हम कर्मों की सच्ची सफलता चाहते हैं तो शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प ला करके उन कर्मों को करें और सबके कल्याण प्रति कर्म हुआ हो। अगर मेरे ही हित के लिए कर्म करूं या मेरे ही स्वार्थ के खातिर अगर मैं कर्म करूंगी तो वास्तव में वो मुझे भी सुख नहीं देगा। लेकिन अगर कर्म के साथ धर्म का मेल है तो औरों को तो सुख जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे तो मिलेगा ही, क्योंकि औरों के सुख में मेरा सुख समाया हुआ है, ये हम न भूलें। हम कई बार समझते हैं मैं सुखी रहूं, दूसरे भले दुखी रहे, लेकिन देवत्व स्थिति ये नहीं है। देवत्व का भाव है देने वाला, देवता जो देता है। तो परमात्मा सदा दाता है, वो सदा देता है। तो हम भी परमात्मा के बच्चे देवता बनते हैं, अर्थात देने वाले, दिव्य गुण धारण करने वाले और दाता बन करके देने वाले। तो आत्म शुद्धि के लिए ये एक आवश्यक कार्य हो जाता कि हम कर्म और धर्म दोनों का समावेश करें। कई ऐसे लोग हैं जो 1 घंटा तो पुण्य करते हैं, 1 घंटा दान करते हैं, 1 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन 23 घंटा तो पाप ही करते हैं। और वे समझते हैं कि बस 1 घंटा पुण्य करने से वो 23 घंटा जो पाप किया वो पाप हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा तो हमने दान पुण्य किया, भगवान का नाम लिया, पूजा पाठ किया, प्रार्थना किया, आदि आदि सब कुछ किया। लेकिन ये भी एक अज्ञान है। हम जैसा जैसा कर्म करेंगे वो कर्म हमारे साथ ही रहेगा। ऐसे नहीं कि अगर थोड़ा सा पुण्य किया तो हमारा पाप मिट जाएगा, पाप तो बना ही रहेगा। हाँ, हो सकता है अगर महान पुण्य किया तो वो पाप सूली से काटा हो सकता है, लेकिन काटा तो जरूर होगा ही, वो पूरा ही समाप्त हो जाए ये कभी नहीं होगा। और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 23 घंटा धर्म के कार्य में रहते हैं, लेकिन 1 घंटा थोड़ा सा कर्म कर लिया तो भी उसका मन खाएगा, क्योंकि कर्तव्य को छोड़ करके वो बैठा है। लेकिन कर्तव्य का पालन करते हुए, घर गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक न्यारी स्थिति का अनुभव करना, यही वास्तव में हमको राजयोग सिखाता है। राजा जनक के समान हमको जीना सिखाता है, जिसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। जीवन में रहते मुक्ति की अनुभूति, अर्थात आत्मा देह में है लेकिन देह में रहते हुए भी देह से न्यारी स्थिति, और कर्म इंद्रिय जीत स्थिति, वास्तव में यही जीवन मुक्त स्थिति है, जिसमें पदार्थों का सुख भी ले रहे हैं, जीवन का हर प्रकार का सुख ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें लिप्त नहीं है। जैसे राजा जनक की कहानी आती है कि एक सन्यासी उनके पास गया और उनसे ये युक्ति पूछी कि आप जीवन मुक्त राजा कैसे कहलाते हो, तो राजा ने उसको एक दीपक दिया और कहा कि इस दीपक को लेकर मेरे महल का भ्रमण करके आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये दीपक बुझे नहीं। सन्यासी गया, चारों ओर बहुत सुंदर महल की कारीगरी देखी, बहुत खुश हुआ, लेकिन बार बार उसका ध्यान दीपक पर ही था कि ये दीपक कहीं बुझे नहीं। और जैसे ही वह वापस लौटा, राजा जनक ने उनसे पूछा, आपने महल का अवलोकन किया, अच्छी तरह से देखा? उस सन्यासी जी ने कहा, राजन देखा जरूर, लेकिन ध्यान तो हमारा दीपक पर ही था। तो राजा ने कहा, बस यही मेरी युक्ति है जीवन मुक्ति की। मैं जीवन में रहता हूँ, इस महल में रहता हूँ, संसार में रहता हूँ, लेकिन संसार मेरे में नहीं है, मैं संसार में अवश्य रहता हूँ, अर्थात इस संसार का असर लेप क्षेप मुझको नहीं लगता, और यही स्वरूप है जिसकी तुलना हम कमल से करते हैं। कमल के जीवन में उसका कितना बड़ा परिवार है, उसके पत्ते हैं, डंडी है, जड़े हैं, लेकिन कमल का फूल न्यारा और प्यारा है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, आत्मा की अनुभूति करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम देह में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होते, क्योंकि संकल्प हमारे बहुत ऊंचे होते हैं, अनासक्त रहते हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं। इसी को कहा जाता है कर्म और धर्म दोनों का समन्वय। ओम शांति।